सबोपदेश का जो सही अर्थ है वो शिक्षक है, उसका सही जो इब्रानी भाषा से जो अर्थ लिया गया है उसका अलग है टीचर, शिक्षक। तो सुलेमान एक अच्छा शिक्षक है और वो मुझे और आपको सिखाना चाहता है, और इसीलिए उसने बहुत सारी बातों को बहुत विस्तार से लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन दिनों के लिए जिसके द्वारा मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। जो मैं आपसे क्या साथ बांट रहा हूँ उसमें मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करा और कई संदेशों को सुना, कई तरह बाइबल को कई बार एक एक अध्याय को पढ़ा, तो प्रभु ने मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका दिया और एक बार फिर से अपने आप को ईसाइयों में जांचने का मौका दिया मैं किस प्रकार से प्रभु के साथ चल रहा हूँ। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो इस कान से सुन करके उसे निकालना नहीं, हमें उन वचन के प्रति प्रत्युत्तर देना है और सोचना है कि मैं अपने आप को वचन के किस दायरे में रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, क्या मेरे जीवन में वो बातें हैं या नहीं हैं, या कितना अधिक मुझे परमेश्वर के वचन का आदर करना, सम्मान करना और आगे बढ़ना है। सो ये हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। तो आज जो 11वां अध्याय है केवल इसमें 10 पद हैं, लेकिन इन 10 पदों में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगा कि संक्षिप्त में इन बातों को आपके सामने ला सकूँ। अगर इस अध्याय का शीर्षक या निचोड़ देखा जाए तो यह है कि जीवन कठिन है परंतु परमेश्वर भला है। जीवन कठिन है, मानवीय जीवन सरल नहीं है, और खास तौर से जब हम प्रभु के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो सरल नहीं है। हर जगह कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बाहर जाइए, ऑफिस में जाइए, बिना ब्राइब के काम नहीं होता, कहीं और जाइए, कितना बहुत सारी चीज़ों को जो पिछली बार भी हम देख सके हैं कि ऐसे भी शासक हैं जो क्रूर हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, और वो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं उनको सतावनी का सामना करना पड़ता है, ये पहले हम देख चुके हैं। सो जीवन कठिन है लेकिन परमेश्वर भला है जो मेरे और आपके साथ है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, जीवन को परिपक्वता में ले जाती है। जो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो हमारे जीवन को सिद्धता की, परिपक्वता की ओर ले जाती है। अर्थात मसीह जीवन हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग का होना है, सकारात्मक सोच का होना है। कई बार हम बड़ी सरलता से इस दायरे में गिर जाते हैं और हमारा मस्तिष्क हर समय नकारात्मक सोचता है, चाहे वो व्यक्ति के बारे में हो, चाहे वो सेवा के बारे में हो, चाहे कार्य के बारे में हो, चाहे किसी चीज़ के बारे में, हमेशा नकारात्मक 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 नकारात्मक। और उसके कारण जो जिस स्थिति मुझे सिद्ध होना चाहिए या परिपक्व होना चाहिए मैं नहीं होने पाता या नहीं होने पाती। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। ध्यान रखिएगा, अब जो 11वां 12वां अध्याय है वो एक विश्वासी होने के बाद लिख रहा है, अर्थात उसने परमेश्वर के विश्वास में अब वो दृढ़ है और जान रहा है कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना है। इससे पहले वो परमेश्वर से दूर था तो संसारिक दृष्टि से बहुत सारी बातों देख रहा था, अब परमेश्वर के निकट है, विश्वास में है, अब विश्वास के बारे में देखते हुए इन सारी बातों को लिख रहा है। सो जब मैं और आप एक विश्वासी हैं, हमने प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मेरे प्रियो, तो मेरे और आपके जीवन में ये वचन किस प्रकार से कार्यकारी होना है। कल जब हम शाम को उस मीटिंग में थे जो कंडोलेंस मीटिंग थी भाई आलोक की, और वहाँ पर कई लोग इकट्ठा थे, तो जो लोग वहाँ खड़े हुए थे जो बोल रहे थे सबके मुंह से एक शब्द निकल रहा था, एक शब्द ये निकल रहा था, हम सब स्वर्ग में जाएंगे। ये विचार गलत है, हम सब नहीं, केवल वो उनके पास आशा है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम सब प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, हम सब अपने प्रियो को जो मृतक हो चुके हैं, जिन्होंने विश्वास कर मृत्यु पाई है, उनको नहीं देखें, केवल वही जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये सोचना जरूरी है, क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? चर्च आने की बात नहीं है, दान देने की बात नहीं है, धर्म कर्म की बात नहीं है, क्या मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है या नहीं? अगर ऐसा है तो मेरे और आपके लिए आशा है कि हम प्रभु को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है पहला योना उसका 3रा अध्याय पहला दूसरा पद। तो हमें वचन को समझना है और परमेश्वर के सिद्धांतों को समझना है। और हम यहाँ पर कितने हैं, यदि आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार कर सके स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उस प्रेम का प्रतीक और प्रमाण ये है कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य बनाकर भेज दिया, धर्म स्थापित करने के लिए नहीं, केवल अपना प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन मानव जाति को बचाने के लिए जो पाप के कारण मर रहा था, जो पाप के कारण उस पर मृत्यु का दंड लग चुका था और पाप के कारण उसका न्याय ठहरा चुका था। वो मृत्यु उसने स्वयं ले ली और उसने ये कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए मेरे प्रियो, मेरे और आपको मसीह यीशु पर विश्वास करना बहुत अनिवार्य है। अब जब इसने इस बात को देख लिया है कि सुलेमान ने कि परमेश्वर कैसा है, तो जैसे मैंने कहा मसीह जीवन कठिन है लेकिन परमेश्वर भला है। अब एक विश्वासी होने के नाते मेरी आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी पड़ रही है, क्या उत्तरदायित्व है, और वो इस 11 अध्याय में बहुत तरीके से इस बात को समझाना चाहता है। सो सबोध पद 11 अध्याय 1-10 तक, पहला 3 पद, मात्र देखने वाले नहीं लेकिन कुछ करने को तैयार रहे। पहली चीज, हम संसार में रह करके एक दर्शक बनकर जीवन ना बने, लेकिन हमें कुछ करना है। एक विश्वासी को, मसीह को कुछ करने के लिए तत्पर और तैयार होना है, ये हमें करने के लिए तैयार होना है। दूसरा, 4 पद, संदेह के स्थान पर भरोसा रखना है। 5 पद, आलसीपन के स्थान पर क्रियाशील रहें, आलसी ना बने, आलस में जीवन ना व्यतीत करें। 5 पद के अनुसार, 6 पद के अनुसार, लालच के कारण टाल माटोल नहीं करें। कई बार हम मसीह में आने के बाद हमारा जीवन स्वार्थ और लालच में बढ़ जाता है। इसके साथ परमेश्वर 2 बातें और चाहता है। क्या चाहता है? 7-8 पद, परमेश्वर के साथ संबंध और संतुष्टि, कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ मजबूत बने। जब उसके साथ हमारा जीवन मजबूत होता है तो संतुष्टि होती है। और अंतिम बात, अपनी आशीषों का लाभ वर्तमान में उठाएं, जीवन क्षण भंगुर है। 9-10 पद, जीवन के बारे में किसको नहीं मालूम, हम किसी के बारे में नहीं जानते, आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कल मेरी स्थिति क्या हो, जीवन क्षण भंगुर है। सो हमें किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, सो हम इन बातों पर थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे। तो 11 अध्याय के पहले पद, अपनी रोटी जल की सतह पर डाल दे क्योंकि बहुत दिन बाद तू उसे पुनः प्राप्त करेगा। अब रोटी, अगर रोटी जल पर डालेंगे तो रोटी जल पर क्या होगा, थोड़ी देर पानी, पानी के बाद क्या हो जाएगी। लेकिन क्यों रोटी का उदाहरण, क्यों ऐसा करा, तो वो एक उदाहरण के साथ कुछ बातों को समझाना चाह रहा है, उसके अंदर कुछ और छिपी हुई बातें हैं जो कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि मेरा और आपका जीवन निरंतर कुछ करने वाला होना है। क्रियाशील की आक्रमणता मेरे और आप में दिखाई देनी है, मात्र हम देखने वाले ना हो लेकिन कुछ करने के लिए तैयार हों। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, यदि हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, यदि हम कहते हैं वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका उपासक हूँ, वो मैं उसकी उपासना करता हूँ, तो मेरे और आपके पास एक जिम्मेदारी हो जाती है। और जिम्मेदारी हो जाती है ये है कि मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहना है। रोटी जल पर डालने का मतलब ये है कि मेरे को जो कुछ भी परमेश्वर ने काम दिया है उस कार्य को निरंतर सत्कर्ता के साथ जागृत होकर के करने के लिए तैयार रहना है, टाला मटोल नहीं करना। कई बार हम विश्वास करने बाद धीरे से अपने जीवन में बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठते हैं और हमें भी इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि हाँ हमने विश्वास कर लिया, अब ठीक है। जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, उद्धार पाना जरूरी है, आप परमेश्वर के द्वारा उसके द्वारा बचाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर मेरे और आपको जिम्मेदारी देता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा था अपने शिष्यों से, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वो निर्देश था जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने शिष्य को दिया था। और उसी के बाद हम देखते हैं कि उनके शिष्य किस प्रकार से तितर बितर हो गए, उन्होंने कठिनाई सही, संकट सहा, मुसीबत सही, विरोध सहा, अपमान सहा, बहुत कुछ हुआ। कुछ शिष्य थे जिनको मार डाला गया, थोमा सबसे पहले भारत में आया, भारत में थोमा सबसे पहले आज से लोग कहते हैं अंग्रेज लोग क्रिश्चियनिटी को ले, अंग्रेज लोग नहीं लेकर आए, अंग्रेजों के आने से कई वर्ष पहले प्रभु का वचन भारत में आ चुका था। और मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरे और आपके लिए आनंद की बात है, जब मैं अन्य जातियों से बात करता हूँ कहता हूँ बाइबल में भारत का नाम आया है, कोई और पुस्तक में दिखा दीजिए, बाइबल में भारत का नाम आया है। इसलिए भारत देश बाइबल में परमेश्वर की योजना में सम्मिलित है। और यही कारण था कि थोमा सबसे पहले 2020 साल पहले भारत में आया और आते हुए साउथ में गया और वहाँ से सुसमाचार प्रचार किया और सबसे पहली कलीसिया वहाँ पर स्थापित हुई भारत में। उसने कुछ किया और उसी तरह से सुसमाचार फैलता गया। सो मेरे प्रियो, मेरे और आपको प्रभु ने ना केवल विश्वास के लिए अनुग्रह प्रदान किया है, लेकिन मेरे और आपको प्रभु ने कुछ ना कुछ में जिम्मेदारी भी दी है कि कहीं ना कहीं रह के हम उस बात जिस स्थान पे हम हैं, जिस सेवा में हम हैं, चाहे अपने साक्ष्य द्वारा, चाहे अपने दान के द्वारा, चाहे अपने वरदानों के द्वारा, चाहे अपनी सेवा के द्वारा, चाहे अपने परिश्रम के द्वारा, चाहे अपने समय के द्वारा, बहुत कुछ अपने बना सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है तू अपनी रोटी डाल पे डाल दे और तू क्या करेगा, बहुत दिन बाद उस पुनः फलवंत पाएगा, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करते हुए किसी भी छोटे से छोटे कार्य करेगा प्रभु के नाम से, परमेश्वर उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा। और यही बात पर प्रभु के वचन में पौलुस ने लिखा है, जो पहला क्रंथी 15 में, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं ठहरेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम इस बात पे को सीरियसली नहीं लेते। और इसलिए आप हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में आप मरीजों के बीच में सेवा कर रहे हैं, शायद कोई मरीज है वहाँ पर, उसके लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि उसके कान में प्रभु यीशु मसीह का नाम पहुँच रहा है। और कितने बार हमने देखा है लोग, कितनी साक्षी हमने सुनी है जो कहीं ना कहीं रीति से अस्पताल में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन लिया और वे आकर बाद में उन्होंने जीवन को पा लिया। आप स्कूल में टीचर हैं, शिक्षक हैं, आपके साथ जवान बच्चे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा जो भी कार्य लेता है वो व्यर्थ नहीं जाता। तब वो क्या कह रहा है, अपना अंश 7 या 8 जनों को बांट दे, अपना जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसको तू बांट दे, मुट्ठी बना के बंद कर मत रख। जो तेरे पास चाहे धन है, चाहे तेरे पास योग्यता है, चाहे तेरे पास गुण है, चाहे तेरे पास वरदान है, चाहे तेरे पास समय है, उस 7 या 8 जनों में बांट दे, क्योंकि तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, करीब 4 या 5 बार ये शब्द आया, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। पहले दूसरे पद में है, दूसरी बार 5वें पद में, जैसा तू वायु का पथ नहीं जानता, फिर उसके बाद 5वें पद में फिर आया है, वैसे ही परमेश्वर के क्रियाकलाप नहीं जानता, फिर 6वें पद में, क्योंकि तू नहीं जानता, करीब 4 बार ये शब्द आया, तू नहीं जानता। हम नहीं जानते, हम परमेश्वर के योजनाओं को नहीं जानते, परमेश्वर की बुद्धि को नहीं जानते, परमेश्वर के समझ को नहीं जानते, परमेश्वर के क्रियाकलापों को नहीं जानते, हम नहीं जानते, लेकिन कौन जानता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। उसने मुझे और आपको बनाया है और जो मुझे और आपको इस्तेमाल करता है वो जानता है कि क्या करेंगे, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा संरक्षक है, वो हमारा मदद करने वाला है, वो जानता है और वो ही मुझे और आपको उपयोग करता है। कह रहा है दूसरे पद में, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। तीसरे पद में, यदि बादल जल से भरे हैं तो वे पृथ्वी पर वर्षा उंडेल देते हैं और वृक्ष चाहे दक्षिण को गिरे चाहे उत्तर की ओर गिरे, जहां गिरता है वो वहीं पड़ा रहता है। अब ये उदाहरण के साथ बात कर रहा है, सुलेमान इन उदाहरण को इस्तेमाल करते हुए इनको समझे, मुझे और आपको समझाना चाह रहा है। जो कुछ भी सब उपदेशक में 10वें अध्याय में वो लिख रहा है, वो मुझे और आपको एक नई बुद्धि, नई समझ, नया ज्ञान दे रहा है कि मेरा और आपका जीवन किस प्रकार है और कैसा होना चाहिए। और वो इन चीजों का उदाहरण ले लेके समझाता है। वो कहता है, तो पहले कह रहा तू बांट दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्तियां पड़ेगी। तेरे को परमेश्वर ने अवसर दिया है, तुझे परमेश्वर ने योग्यता दी है, तुझे परमेश्वर ने स्वास्थ्य दिया है, तुझे परमेश्वर ने जीवन दिया है, तुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन अगर उन सब कुछ के बाद तू बैठा रहे लेकर के और दूसरे तक वो चीज ना पहुंचे, तो तू नहीं जानता किस समय विपत्ति आ जाएगी और उससे किसी दूसरे को लाभ नहीं पहुंचेगा। मसीह जीवन मेरा और आपका दूसरे को लाभ पहुंचाने वाला जीवन है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, मैं अक्सर बोलता हूं, कई अब हम तो इससे थक चुके, हमने इससे इतना करा है, इसने धोखा दिया, अब हम नहीं करेंगे। और मेरे मन में यही विचार आता है, ठीक है अगर प्रभु मुझसे कह दे कि रौली मैं तुझसे थक गया, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा, तो क्या होगा? और ये विचार मेरे मनस्तित्व में हमेशा बने रहता, और ये बाध्य करता है मुझे कि चाहे लोग कितना ही अधिक मेरे साथ कैसी करें, मैं अब उस कदम से मैं को पीछे ना हटाऊं। ये मुझे बाध्य करता है, ये सेंटेंस मेरे जीवन में हमेशा बना रहता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मेरे हृदय में बस गया है कि अगर प्रभु कहते हैं रौली बस, तो उस दिन मेरी क्या स्थिति होगी। हम कई बार किसी लोगों के लिए कहते हैं बस अब हम नहीं करते, इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, इन्होंने ऐसा करा, नहीं। और हम इस उसमें आते हैं, ये नकारात्मक है, और नकारात्मक सोच हमारे विश्वास को धीमा कर देती है, ढीला कर देती है, दबा देती है। लेकिन एक विश्वासी जीवन आंखें बंद करके परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ता है। ठीक है, अपनी रोटी जल पर डाल दे, तू नहीं जानता, हम नहीं जानते, हमें जो अवसर मिलेगा उस अवसर का उपयोग करते हुए जो कुछ हमें करने को मिलेगा हम करेंगे, हमें करना है। चाहे सेवा में हो, चाहे सहायता में हो, चाहे प्रार्थना में हो, सुसमाचार प्रचार करने में हो, कोई भी जो कुछ भी किसी मदद करने में हो, हम सब कुछ। पिछले दिनों में यहाँ पर एक भाई था, और उस भाई की कुछ भाइयों ने बहुत मदद करी। जब भी रात में बीमार होता था, रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे वो फ़ोन करता था, और यहाँ से कुछ भाई लोग बेचारे दौड़ के जाते थे, और घर से घर वालों को भी मदद करने तैयार नहीं था। यहाँ के भाई बच्चे, जवान बच्चे जा करके उसको अस्पताल ले जा रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत कुछ करा। लेकिन बाद में कुछ और दिखा, कुछ ही दिन बाद जैसे उसको स्वस्थ हुआ, उसके बाद ही उसका सब कुछ बदल गया। अब उसके साथ सोच के कि उसने ऐसा किया, अगर कल दूसरे की ऐसी स्थिति, क्या तो हम नहीं करेंगे, हमें करना है। अगर एक ने हमारे साथ गड़बड़ किया तो क्या हम दूसरे को छोड़ देंगे? नहीं, यही सिखाना चाह रहा है। सुलेमान 11 अध्याय में इसी बात को जोड़ दे देकर बता रहा, जिसको हम और देखते चले जाएंगे, और इसलिए हमें इसको समझना है। तब कहता है ठीक है, बादल जल से भरे हैं तो पृथ्वी वर्षा पर उंडेल देते हैं, ठीक है, आप देख करके उसका करते हैं। लेकिन चार पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है, चार पद, जो वायु को ताकता है वो बोने नहीं पाएगा, और जो बादलों को देखता रहता है वो काटने नहीं पाएगा। जो वायु को देखता है, क्या मतलब है? एक किसान अगर केवल इस बात को देखकर चले, ओ बहुत तेज हवा चल रही है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है बारिश आने वाली है, जब बारिश आ जाएगी, बादल गिर रहे हैं, जब बारिश आ जाएगी तभी मैं कह दूँ, वो अपनी फसल को कभी नहीं करने पाए। हो सकता है बादल थोड़ी देर के बाद चढ़ जाए, नहीं फिर आ जाए, फिर चढ़ जाए, तो क्या वो अपने हाथ को रोके रहेगा? बादल को देख करके वो खेती नहीं करता, वो सीजन को देख करके, समय को देख करके करता है। इस चीज वो हर समय तैयार रहता है, वो बाहरी परिस्थितियों को देख करके अपना निर्णय नहीं लेता। अगर वो इस बात को देख करके करेगा तो क्या होगा? जो बादलों को देखता है वो काटने नहीं पाएगा। अगर वो ऐसे देख कर तो कठिन फसल नहीं होगी, अगर फसल नहीं होगी तो कठिनी भी नहीं होगी, अगर फसल नहीं है तो कठिनी भी नहीं है। तो एक व्यक्ति जो किसान, सच्चा किसान है, मैं अक्सर बोलता हूँ गाँव के लोगों के लिए, माफ कीजिएगा, और गाँव में दो चीज नहीं छूट सकती है, मालूम क्या क्या दो चीज? एक तो मेला नहीं छूटता है, और दूसरी शादी नहीं छूटती। फसल पड़ी रहेगी और बाद में सड़ जाएगी, अरे बारिश आ गई, जब पड़ी है फसल, काटने का समय, हम शादी में जा रहे हैं, हम मेले में जा रहे हैं, क्या हुआ बाद में? बारिश आ गई, फसल नुकसान हो गई। क्यों? हमारा ध्यान कुछ और था, जो जिम्मेदारी थी, जो प्राथमिकता थी, हमने उसको नहीं समझा। और कई बार किसान इसी कारण सफर करते हैं, और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम बाहरी परिस्थिति को देख करके अपने जीवन में निर्णय नहीं लेते, हम प्रभु को देख करके, प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु पर निर्भर रह करके, उसके वचन को सुन करके हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। प्रभु बुला रहा सेवा के लिए, हम देख रहे हैं, हाँ सेवक बुला रहा है। आपको मालूम है लूका में उसके नौवें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तीन लोग थे प्रभु के पीछे आए, और पीछे आके कह लेंगे प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे, ये करेंगे। एक ने कहा ठीक है मुझे करने दे, तीसरा आया प्रभु मैं भी तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, प्रभु मुझे जाने दे, पहले मैं अपने घर से परमिशन ले लूँ, पहले मैं ये कर लूँ। कई बार हमारे जीवन में जब निर्णय हम लेते हैं तो ये चीज़ आती है, शायद किसी मदद करनी है, शायद कलीसिया में समय देना है, शायद किसी सेवा करनी है, शायद कुछ और करना है, शायद सेवा में प्रभु बुलाट कर रहा है, पहले मैं ही कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ फिर करूँगा, पहले मैं कर लूँ, समय निकल जाता है, समय निकल जाता है। प्रभु की आवाज़ को सुनकर, कभी कई बार परमेश्वर हमसे वचन में बातचीत करता है और हमारा हृदय कायल होता है और हम प्रस्ताव करने तैयार होते हैं, तब फिर हम सोचते हैं, फिर कहते हैं अच्छा हम ये कर लें, और उसके बाद तो खत्म हो जाता है। जहाँ पहले ये हो जाए और उसके बाद वहाँ परमेश्वर की आवाज़ दब जाती है। और मेरे प्रियो, ऐसे समय में हम अपनी फसल को प्राप्त नहीं कर सकते। वो कहता है वो काटने नहीं पाएगा, जैसे तू वायु को का पथ नहीं जानता, और ना ये कि गर्भवती स्त्री के गर्भ में हड्डियां रूप कैसे धारण करती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर के क्रियाकलाप नहीं जानता जो सब चीजों की रचना करता है। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कि एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में किस प्रकार से बच्चा जन्म लेकर के वो विकास करता है, कैसे, हम नहीं जानते कैसे उस बालक या बालिका के जीवन जो गर्भ में है, उस बच्चे के जीवन में हड्डी आ रही है, मांस आ रहा है, सांस आ रही है, हम नहीं जानते, वो परमेश्वर जानता है जो रचने वाला परमेश्वर है। मेरे पे वो सब कुछ जानता है, वो मनुष्य को उसने बनाया है, सृष्टि को उसने बनाया है, मुझे और आपको उसने बनाया है, वो सब कुछ जानता है। और जो कुछ भी हम बाहरी चीज को देखकर हम निर्णय लेते हैं, मेरे प्रियो, हम अपने भविष्य को नहीं जानते। मैं बार बार कहता हूं, हम अपने कल को नहीं जानते, लेकिन हम उसको जानते हैं जो हमारे कल को जानता है, जो हमारे कल को जानता है। और ऐसा जीवन परमेश्वर के साथ आशीष का जीवन होता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा वो और अधिक मेरे और आपके विश्वास को हिलाना चाहता है। हम कितना अधिक प्रभु पर निर्भर होते हैं, कितना अधिक प्रार्थना करते हैं, कितना अधिक प्रभु के संगति में रहते हैं, कितना अधिक उसके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, कितना अधिक उसके मार्गों में चलते हैं, कितना अधिक उसके लिए खर्च होने के तैयार होते हैं। संडे चर्च आ गए फिर चले गए, काफी है? काफी नहीं है, काफी नहीं है। हम अपना सब चीज के लिए समय है, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं है। मेरे प्रति दरअसल बहाने हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा मीटिंग हो जाती है, उसको उसमें भाग लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मुश्किल है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम परमेश्वर के जीवन के उस प्राथमिकता को नहीं जानते। हम नहीं जानते परमेश्वर जिसने मुझे और आपको रचा है वो मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। हम नहीं जानते कि हम और अधिक कितने अधिक परमेश्वर के निकटता में आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। और इसलिए मेरे प्रियो कहता है वो रचने वाला है, उसके क्रियाकलाप, परमेश्वर के क्रियाकलाप नहीं जानते जो सब चीज़ों की रचना करता है। वो सब कुछ को बनाना, हम उसके काम कैसे हवा चलती है हम नहीं जानते। परमेश्वर का वचन कहता है, योना ने कहा, योना उसके तीसरे अध्याय में निकोदेमस आया और निकोदेमस कहने लगा कि यदि जब तक व्यक्ति नए सिरे से न जन्मेगा परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो निकोदेमस कहने लगा, एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया तो कैसे वो जन्म ले सकता है, कैसे जन्म है? तब उसने कहा, योना कहता है, हवा किधर से आती है और किधर जाती है मनुष्य नहीं जानता। हवा को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। कई बार हम इस हवा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, कई बार हम सूरज चांद के लिए जो चांद रोशनी प्रदान करते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं, कई चीज़ों के लिए हम इसको आसानी से लेते हैं। अभी पिछले दिनों में जब ये बीमारी उत्पन्न हुई है, बीमारी जो कोविड की हुई, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कठिनाई लोगों ने महसूस की? किसकी? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की। लेकिन कितना अधिक हम ऑक्सीजन की कीमत को समझते हैं जब हम ऐसे घूमते हैं जो परमेश्वर हमें फ्री में देता है, कितना दिया हम उसके लिए परमेश्वर देना। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सुधि लेते हैं और आप इसको हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते, वो रचने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, वो सब कुछ है। मेरा और आपका जीवन और अधिक उस पर निर्भर होकर के उसके लिए जीना है। और तब उसके बाद छठे पद में क्या कहता है, प्रातःकाल को अपना बीज बो और संध्या समय भी अपने हाथ ढीले मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि इस समय या उस समय की बुआई सफल होगी अथवा दोनों समय के समान रूप से अच्छी उत्पन्न होगी, इस समय की या उस समय की। मेरे प्रियो कह रहा, तू नहीं जानता, वो बार बार इस बात को कहता है, कह रहा है कि प्रातःकाल अपना बीज बो और संध्या समय भी अपने हाथ को ढीले मत कर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए, तेरा जीवन ढीला ना होने पाए, तेरा परिश्रम हल्का ना होने पाए। जो परमेश्वर को तूने पाया है उस परमेश्वर के साथ चलने में लगा रहे, हिम्मत मत हार, ढीला मत पड़। उसके साथ प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है, साक्षी का जीवन है, लोगों के साथ संगति करने जीवन है, कलीसिया में संभागी होने जीवन है, सुसमाचार बांटने का जीवन है, कलीसिया में लोगों की चिंता करने जीवन है, उनके लिए प्रार्थना करने जीवन है। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि आप लोग इन दिनों में आपस में एक दूसरे फ़ोन करके कम से कम हाल चाल लेके प्रार्थना करें, एक दूसरे की प्रार्थना करें, अच्छा है। हम खुद जागृत हो सकते हैं और दूसरे को जागृत रख सकते हैं। लेकिन कई बार हम इस बात को बहुत हल्का लेते हैं। सुलेमान यही सिखाना चाह रहा है, कह रहा है कि क्योंकि हम नहीं जानते, तू नहीं जानता इस समय या उस समय, इस समय का परिश्रम या उस समय का परिश्रम, इस समय का देना या उस समय का देना, इस समय की गवाही या उस समय की गवाही, इस समय का कार्य उस समय का कार्य, कौन सा परिश्रम, कौन सा कार्य, कौन सी सेवा, कौन सी सहायता, कौन सी चिंता जो दूसरे की आप करते हैं, ओ मेरे प्रिय, तू नहीं जानता कौन सा। लेकिन प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर किस कार्य पर दृष्टि करता हम नहीं जानते, और परमेश्वर किसी के कार्य को इग्नोर नहीं करता, टालता नहीं। आपका थोड़ा सा परिश्रम, आपका थोड़ा सा परमेश्वर के प्रति प्यार, आपका थोड़ा सा परमेश्वर के प्रति समय, आपका थोड़ा सा परमेश्वर के प्रति त्याग, जो कुछ भी थोड़ा सा सेवा, जो कुछ भी आप लिस्ट बना सकते हैं, वो परमेश्वर देखता है और परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं। करीब 20 साल पहले, 2004 साल, जब मैं दूसरी कलीसिया में था और जब मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं बहुत निराश था उस समय कुछ दिन। लेकिन एक दिन मैं अपने मॉर्निंग डिवोशन में था, प्रार्थना काल, उस समय मेरी कमर सही थी, मेरे को अच्छा लगता था कि मैं घुटनों के बल रह के परमेश्वर चरणों में रहूं, और मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने बाइबल खोली और जब पढ़ने लगा तो मेरे सामने ये पद आया जो इब्रानियों उसका 6:10 पे, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे प्रेम और परिश्रम को भूल जाए जो तुमने किए हैं और कर रहे हो। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, गॉड इज नॉट अनजस्ट। मेरे प्रिय, कितना सुंदर है, हम ऐसे परमेश्वर के आराधक हैं। हमारा परमेश्वर इतना सच्चा, इतना बड़ा परमेश्वर, इतना भला परमेश्वर है। इसीलिए मैंने कहा कि मानवीय विश्वासी जीवन कठिन है, लेकिन हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो अन्यायी नहीं है कि हमारे कार्य को भूल जाए जो हमने उसके नाम से किए हैं। मेरे प्रियो, थोड़ा सा त्याग, थोड़ी सी निंदा, थोड़ा सा अपमान, जो कुछ भी आप उसके नाम से सहने तैयार हैं, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो उसका प्रतिफल देने तैयार है, क्योंकि परमेश्वर देखता है। और इसलिए मेरे और आपको आनंदित होना चाहिए, मेरा और आपका हियाव बढ़ना चाहिए, मेरा आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, मेरे आपके जीवन में और अधिक परमेश्वर प्रति समर्पण गहरा होना चाहिए। ओ प्रभु, आप ऐसे परमेश्वर हैं कि आप अन्यायी नहीं हैं, आप मेरे प्रेम को, मेरे परिश्रम को, मेरे कार्य को, मेरे अवसर को, मेरे सब कुछ को, जो कुछ मैं तेरे नाम से और तेरे लिए करने की तैयार रहता हूँ, उसको आप देखते हैं और आप उसका प्रतिफल देने के तैयार हैं। और इसलिए हम नहीं जानते, ढीले मत पड़िए, ना सुबह ढीले ना शाम को, जो कुछ परमेश्वर चाहे करते हैं। प्रभु को ग्रहण करने का, पापों से पश्चाताप करने का, सेवा हेतु चुनाव करने का, दूसरों के लिए खर्च होने का, सुसमाचार प्रचार करने का, किसी को साक्षी देने का, किसी की आर्थिक सहायता करने का, कलीसिया में अपने जीवन को देने का, कलीसिया में अपने धन तन मन से अपने सेवा को लगाने का, जो कुछ भी है, कुछ भी है, आप तैयार हैं मेरे प्रियो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, कहता है परमेश्वर। और तब उसके बाद 7 से लेकर 10 तक, अगर हम सचमुच में हम इन बातों को जो अभी तक हमने देखा है हम देखें, तो 4 बातों में मुख्य 4 बिंदुओं में हम इसको निचोड़ में लाते हैं। पहली चीज, हमारा विश्वास परमेश्वर पर निर्भर हो, स्वयं पर नहीं। हमारी निर्भरता परमेश्वर पर, स्वयं पर नहीं। हमारी प्रयत्नशीलता परमेश्वर के प्रति निरंतर बढ़ती जाए, हमारा प्रतिफल परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हो, और तब हमारा प्रभाव दूसरे पर। मेरे प्रिय, एक मसीह जीवन दूसरे जीवन पर प्रभाव डालता है। गिनीज बुक का आपने नाम सुना होगा, और गिनीज बुक 1955 से हर साल निकलती है, और उस पर जो भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड दिए जाते हैं, जो इनाम देते हैं, तो उसमें उसका वर्णन पाता है कोई भी। कई सारे खिलाड़ी होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, उसमें आता है कई तरह से, भारत के कई लोग कई जगह पर हैं। उसमें एक अजीब सा रिकॉर्ड उसमें आया, और वो रिकॉर्ड ये है, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, वो जब छोटा था, बाहर का व्यक्ति है, जब छोटा था तो उसको खड़े रहने का शौक था, खड़ा रहना ज़्यादा था, जैसे उसकी आयु बड़ी खड़े, और फिर धीरे धीरे करके उसकी आदत ऐसी बन गई कि केवल वो खड़े खड़े कई घंटे व्यतीत कर देता था। और कहा जाता है, गिनीज बुक में इसका जिक्र आया है, कहा जाता है कि बाद में उसको ले आके कि उन मूर्ति जो स्टैचूज रहती हैं जहाँ मोम की बनती, उनको ले आके, उसको ले जाके वहाँ कर, और वो बिल्कुल ऐसा खड़ा था, हिलता नहीं था, बिल्कुल हिलता नहीं, और लोग उसको देखकर आश्चर्य करते थे। अगर वो हिल जाता तो लोग डर जाते थे, कहीं भूत तो नहीं है, कैसे हो गया ये, है ना। इसे तो उसने कुछ ना करने का जीवन भर, आश्चर्य की बात है, जीवन भर कुछ ना करने का उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको उस व्यक्ति के समान नहीं बनना, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। वो दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति था, वो माहौल का कारण था, उसके जीवन से किसी को भी कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाया, उसकी आदत ऐसी बन गई थी, उसको ढल गया सकता, ऐसा नहीं। लेकिन आपने नाम सुना होगा डॉक्टर डीएल मूर्टी का, मैं कई बार उनका नाम लेता हूँ, मैं उनकी पुस्तकों को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी जीवनी मुझे बहुत ही प्रभावित करा उनके जीवनी ने। तो उनसे किसी ने आकर पूछ लिया, मूडी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, मूडी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। उन्होंने उत्तर दिया, मेरे जीवन का लक्ष्य यह है कि मैं स्वयं स्वर्ग में जाऊं और ये देखूं कि मैं अपने साथ कितनों को और ले जा सकता हूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं स्वयं स्वर्ग में जाऊं और मैं ये देख सकूं कि अपने साथ मैं कितनों को और को स्वर्ग में ले जाता हूं। ये उनका लक्ष्य, इस प्रकार वो जीना चाहते थे। मेरा आपका लक्ष्य क्या है? क्या अकेले हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर क्या कहेगा, आपसे पूछेगा, आपने तुम में मेरे नाम से क्या करा, प्रभु मैंने ये करा, ये करा, ये करा, कोई आत्मा, कोई फल, किसको हम दिखा पाएंगे? और आप नहीं जानते, आप चलते 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 किसी को सुसमाचार बांट दें और वो कहीं ना कहीं, तो वो कहेगा मैंने फलाने जा रहा था और उसने उससे मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह नाम सुना और तब मैं सीकर बन गया और मैंने प्रभु को पा लिया। क्या हुआ? बीज आपने बोया, वो कहीं और फला, कहीं और कटा, लेकिन परमेश्वर के राज के बना। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, चाहे बस में यात्रा करते हैं, आपके साथ लोग रहते हैं, आपके लिए अवसर होता है। पड़ोस में आप रहते हैं, आपके लिए अवसर होता है। आप लोगों के साथ काम करते हैं, आपके लिए अवसर होता है। यह अच्छा है। और इसलिए डीएल मूडी ने कहा, मेरे प्रियो, नीति वचन कहता है एक आलसी व्यक्ति जो है वो मौसम आने पर भी हल नहीं जोतता। तब आगे चलकर इन सब बातों के बाद एक बात सुन लीजिए, बुद्धिमानता एवं मूर्खता साथ नहीं चल सकती। ये दोनों जन साथ, मूर्ख और बुद्धिमान दोनों साथ नहीं चल सकते। छोटी सी मूर्खता बहुत विनाशकारी हो सकती है, छोटी सी मूर्खता बहुत विनाशकारी होती है। अतः हर कीमत पर पूर्णता को संभालना है। 7-10 पद, परमेश्वर मनुष्य से दो बातें चाहता है। क्या बातें? पहली बात, परमेश्वर चाहता है मनुष्य परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखे। मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ दिन पर दिन गहरा होना है। ये मतलब नहीं कि हम इस संसार में हैं तो एक बिल्कुल जंगल में जाकर रहेंगे या और बिल्कुल असन्यासी बन जाएंगे, नहीं। लेकिन हमें पाप से, बुराई से, संसारिकता से अलग रह करके परमेश्वर की निकटता में जीवन को व्यतीत करते हुए हमारा संबंध उसके साथ और मजबूत होना है। हमारी निर्भरता, हमारा विश्वास, हमारी उसके प्रति आराधना, हमारी उसकी उपासना, हमारे उसके प्रति जो लगाव है, ये सब कुछ जब ये होगा, हम और देखे उसके खोजे होंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ने द्वारा, अन्य पुस्तक को पढ़ने द्वारा। अगर आप साल भर में एक भी कोई बाइबल के अलावा पुस्तक आप नहीं पढ़ते, आध्यात्मिक पुस्तक, आप विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। बाइबल सबसे ज़रूरी है। तो उन 3 बच्चों से मैं कह रहा था, मैंने ठीक है हम बाइबल तुम्हें दे देंगे, तुम्हें पहला काम करना होगा कि नया नियम को बैठ करके 1-2 घंटे पूरा ख़त्म कर जाओ। हो सकता तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन अगर तुम 2-3 बार उसको समझ खत्म कर दोगे तो तब धीरे धीरे परमेश्वर के वचन सीखने समझने मिलेगा। हमने भी ऐसे किया और मैं उनको उत्साहित कर रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ संबंध। दूसरी बात, परमेश्वर में होकर संतुष्टि। हमारा जीवन संतुष्टि का जीवन। अब 2 तरह की संतुष्टि है। एक संतुष्टि इस प्रकार की आती है कि हमें कुछ नहीं करना, घर में पड़े रहते हम संतुष्ट है, कुछ नहीं करें, अरे परमेश्वर सब कुछ करें। एक भाई से हमने कहा, भाई आप काम कर लीजिए कुछ कुछ। नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ, अरे परमेश्वर सब कुछ देख लेगा। कोई काम नहीं, उसको काम दिया जाता है लेकिन काम नहीं। कितनी बार उसको यहाँ पर बहुत काम दिया गया, वाइफ पुताई का बहुत काम था, लेकिन उसको पकड़ पकड़ के घर से लाया गया, पर घर में पड़ा रहना मांगता है वो। परिणाम क्या होना? कुछ और होना। वो आलसीपन है, वो संतुष्टि नहीं, वो झूठी संतुष्टि है। परमेश्वर ने हमें परिश्रम करने ठहराया है, हमें जिम्मेदारी पूरा करने के लिए ठहराया है अपने काम को। 9-10 पद में, हे युवक अपने लड़कपन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल, फिर ये जान कि इन सब बातों में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपनी युवावस्था को गंभीरता से लें। आपकी जो जवानी है, चाहे जवान बेटे हैं चाहे वह जवान बेटी हैं, उसको गंभीरता से लें, उसको किसी प्रकार से संसार के शरीर के हाथ में ना जाने दें, शैतान के हाथ में ना जाने दें। और मेरे प्रियो, और वो कहता है जान ठीक है तुम आनंद मनाओ सब कुछ करो, लेकिन इस बात को ध्यान रखो। और कई बार हम इस पद के पहले भाग पर ध्यान देते हैं लेकिन दूसरे भाग पर ध्यान नहीं देते। दूसरा भाग गंभीरता से भरा पड़ा है। यदि हम केवल इतने ही में है कि हम मग्न हैं, आनंदित हैं, सब कुछ है, सारी चीजें, लेकिन आगे लिखा है फिर भी ये जान रख, क्या जान रख कि इन बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। एक दिन परमेश्वर के सामने हम सबको खड़े होकर अपना न्याय देना पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे विश्वासी अविश्वासी हो। विश्वासी का न्याय विश्वास के अनुसार होगा, अविश्वासी का न्याय अविश्वासी के अनुसार होगा, लेकिन न्याय करना है, मेरे को भी न्याय देना होगा। मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय होना ठहरा दिया गया है, ये ठहरा दिया गया है इब्रानियों का 9:27 पर, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको सचेत रहना है, मुझे और आपको जागृत रहना है, मुझे और आपको पहचान है पाप क्या है और किस प्रकार से मैं अपने आप को पाप से बचाता हूँ। छोटी सी स्वभाव, छोटी सी आदत, छोटा सा झूठ, छोटी सी चीज, मुझे उनसे बात हो, क्यों मुझे नहीं मालूम, मेरी आँख कब बंद हो जाए और अगर कब बंद हो जाए और मैं मुझे परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना पड़े। मेरे प्रियो, मेरी एक ही प्रार्थना रहती है परमेश्वर से, प्रभु जब मेरी आँखें संसार में बंद हो और मैं आपके पास जाऊँ, मैं आपसे एक ही बात सुनना चाहता हूँ और ये सुनना चाहता हूँ कि शाबाश मेरे विश्वासी दास दासी, तो थोड़े में विश्वास रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी ठहराऊँ, तो थोड़े में विश्वास, ये मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अपने घर में कहता हूँ जिस दिन मेरी आँख बंद हो, मेरी कब्र के ऊपर ना कोई बत्ती जलाएगा, ना कोई फूल रखेगा, ना कोई कुछ करेगा, मट्टी है मट्टी मिल जाएगा, मट्टी में डाल आएगा, उसके बाद दोबारा उसको पूजा करने मत जाइएगा, कोई तस्वीर बना करके उसके सामने फूल नहीं रखना, कुछ नहीं करना, क्यों हमारे पास एक आशा है। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात को तैयार रहना, न्याय के लिए तैयार रहना है। कई बार किसी ने कहा जीते बाप को जूता लात, मरे बाप को दूध भात। जब जिंदा थे तब तो जूता लात दे रहे थे, जब मर गए तो पूरे मोहल्ले को बुला के दूध भात खिला रहे, बेकार है, वो तो मर गया चला गया, अब उसके नाम में क्या होगा, जो करना जीता चीज कर लीजिए। ये परमेश्वर न्याय के सांस लिए सावधान रहिए, अतः अपने मन से खेद दूर कर और बुराई को अपने शरीर से उतार फेंक, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों क्षण भंगुर है। क्षण मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, बाप के समान है, मनुष्य का जीवन घास के समान है, सुबह हरी दिखाई देती है शाम को सूख जाती है, बाप थोड़ी देर दिखाई देती है लिप्त हो जाती है। एक विश्वासी को मृत्यु से नहीं डरना, एक विश्वासी को परमेश्वर पर निर्भर रहना है जरूर। अब ये मतलब नहीं हमें मृत्यु से डर नहीं, ट्रक चला रहा दौड़ के उसी के पीछे कूद जाए उसके बाद नहीं, लेकिन एक विश्वासी को रिस्क के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आपको मालूम है मुझे, मैंने यहाँ का भी नहीं खोजबीन करी, लेकिन अमेरिका का जो रिसर्च है वहाँ ये बताता है कि हर 20 मिनट पे एक नशा करके आदमी ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है और किसी न किसी की हत्या करता है, हर 20 मिनट में एक व्यक्ति। अब मान लीजिए वहाँ के लोग सोचने लगे, अरे 20 मिनट में एक मर जाता है, कहीं मैं निकलूँ मैं भी मर जाऊँगा, तो मैं तो घर में बैठा रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो चल सकता है? नहीं, उसको रिस्क लेना है, जाना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मनुष्य का जीवन रिस्क लेने वाला जीवन है। मेरे प्रियो, मेरे और आपको रिस्क लेना है, क्योंकि परमेश्वर हमें देखने वाला है। तो सर्वोपदेशक यहाँ पर सिखाना चाह रहा है कि हमें हर समय जो कुछ उसने बुलाहट दी है, जो कुछ उसने वरदान दिए हैं, जो कुछ उसने आशीष दिए हैं, जो कुछ उसने जीवन दिया है, जो कुछ भी दिया है, उसको हमें हर समय फैलाने के लिए, बांटने के लिए, देने के लिए तैयार होना है। हर समय चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें हमेशा देने के लिए। अब ये मैंने नहीं कहूँगा कि निर्बुद्धता के साथ, बुद्धिमानता के साथ, पर मेरे प्रियो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, और वो सब कुछ प्रतिफल देने वाला बने। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों का संबंध परमेश्वर से दिन पर दिन मजबूत बनता चला जा रहा है। अगर नहीं है तो आप परमेश्वर से मांगिए। अगर आपने अपने जीवनों को कठोर बना रखा है, अपने हाथों को कठोर बना रखा है, तो आप नहीं जानते कब परमेश्वर आपको बुला ले और आपको न्याय देना। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि हम उदार हो जाएं, उदार हो, उदार नहीं बोलो, उदार वो हो जाएं, और तब हम परमेश्वर के लिए जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें।